अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामती के साथ और मैं हूं निदा समीर। रमजान में हम दीगर इबादात के साथ साथ जकात की अदायगी का भी खास एहतमाम करते हैं। हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो हमारे अकाउंट से रमजान की आमद से पहले ही जकात की कटौती कर लेती हैं। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि वो हुकूमत जो हमसे हमारी तनख्वाहों से या हमारे कारोबार में की जो प्रॉफिट है उससे टैक्स भी लेती है, तो क्या उस हुकूमत को यह हक हासिल है कि वो हमसे जकात भी हासिल करे? एक दीनी मसला भी, एक दिलचस्प मौजू भी है, यकीनन आप भी इस बारे में जानना चाहेंगे और इस सिलसिले में हमारी मालूमात में इजाफा करेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। और साथ में हमें गुफ्तगू में ज्वाइन करें दानिश काजी साहब, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र।
यकीनन आपके भी सवाल होंगे जकात के हवाले से, तो हम सबके बे इंतहा सवाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी गांधी साहब, क्या जकात का रमजान से कोई कनेक्शन है?
ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है। रमज़ान तो रोज़ों का महीना है बुनियादी तौर पर। उसमें जो चीज़ फ़र्ज़ की गई है वो यही है कि हम रोज़े रखें, लेकिन चूंकि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लम ने हर नेकी का अजर बयान किया है, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि वो काम जो उनको बाकी महीनों में करने होते हैं वो रमज़ान तक मौखर कर दें। इसी वजह से रमज़ान में लोग नमाज़ ज़्यादा पढ़ेंगे, इन्फाक ज़्यादा करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, लोगों की हमदर्दी करेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि इसमें अजर बढ़ जाता है।
तो अगर ज़कात पूरा साल रोक के रखें रमज़ान में दें तो अजर ज़्यादा बढ़ जाएगा?
ये ज़कात के मामले में दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए। एक है माल की ज़कात। माल की ज़कात के लिए आपको लाजमन साल में एक दिन मुकर्रर करना होगा। वो दिन आप रमज़ान का भी मुकर्रर कर सकते हैं, वो कोई और महीने का भी मुकर्रर कर सकते हैं। मज़हब ने आपको इसका पाबंद नहीं किया। अगर हुकूमत ज़कात लेगी तो ज़ाहिर है कि वो भी एक दिन मुकर्रर करेगी। तो जो आपका दिन है उसमें आपको माल की ज़कात देनी है। अगर उससे चंद घंटे पहले, उस दिन के तुलू होने से पहले रुपया चला गया तो चला गया, और अगर आ गया तो उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। तो असल में ये वो चीज़ है जिसको लोग नहीं समझते, और वो ये ख्याल करते हैं कि वो अपने तौर पर ये फ़ैसला कर सकते हैं। ये फ़ैसला उन्हें पहले करना चाहिए कि माल की ज़कात। अब दूसरी ज़कात है पैदावार की। तो पैदावार की ज़कात तो जिस वक्त पैदावार होती है उसी वक्त वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर मेरी गंदम अगर आज मैंने बर्दाश्त कर ली है और गंदम मैंने मार्केट में डाल दी है अपने खेत से उतार के, तो उसी दिन उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरी कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई माल तैयार होता है, तो जैसे ही वो तैयार होगा उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। अगर मैंने कोई किराए पर जगह दी हुई है तो जैसे ही वो किराया आएगा उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों का मामला बिल्कुल अलग अलग है।
सर, बार बार कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र आया, इसकी कोई खास वजह? क्योंकि अल्लाह ताला को अगर कोई हुक्म देना है तो एक दफ़ा भी अगर कुरान में किसी जगह पर है तो हमारे लिए तो वो हुक्म है, हमें करना है। कोई खास वजह कि बार बार अल्लाह ताला ने ज़कात का जिक्र किया है? और क्या ज़कात का कोई और भी मफहूम आया है कुरान में?
बार बार जिक्र इसका किया जाता है क्योंकि लोग दो ही चीज़ों के मामले में ज़्यादा कोताही करते हैं। एक ये कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें पाबंद किया गया है कि वो दिन में 5 वक्त हाज़िरी दें, तो इस वजह से नमाज की तरफ भी बार बार तवज्जो दिलानी पड़ती है। और उसकी वजह बयान की गई है कि इंसान खुद फरामोश है, वो चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए उसको याद दहानी कराने की ज़रूरत होती है। तो नमाज की वजह ये बयान की गई है कि आखिर इस सलात अल ज़िक्री, मेरी याद को कायम रखने के लिए नमाज का एहतमाम करो। तो नमाज का जिक्र भी आप देखें बहुत सी जगहों पर आया है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़कात का मामला है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन माल अपनी जेब से निकालने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला बार बार ये जोर देते हैं कि मजहब असल में है क्या चीज़। वो दो ही चीज़ों का नाम है, खुदा से सच्ची मोहब्बत, इंसानों से सच्ची हमदर्दी।
इसलिए नमाज इबादत इलाही है और ज़कात जो है वो बंदों के हुकूक की,
दोनों ही इबादत हैं, लेकिन एक का ताल्लुक खुदा से है और एक का ताल्लुक बंदों से।
सर, आपने कहा कि प्योरिटी कर देता है ज़कात, तो अगर मेरा जो गवर्नमेंट टैक्स काट, जो इंटरेस्ट काटती है ज़कात, इंटरेस्ट देती है ना हम लोगों को बैंक्स पे, तो उस पर ज़कात काटती है, तो अगर मेरे सूद की इनकम पे ज़कात कट रही है तो क्या मेरे सूद की इनकम हलाल होगी?
देखिए, बात यह है कि जो चीज़ हराम है वो हराम रहेगी, जो चीज़ हलाल है वो हलाल रहेगी। हमारी हुकूमत बिल्कुल नीम दिली से ये सब काम कर रही है। इससे बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। यानी बजाय इसके कि ये समझा जाता कि ज़कात क्या है, ये माना जाता कि ज़कात और हुकूमत का क्या ताल्लुक है, इसकी अच्छी तरीके से स्टडी करके आप किसी तरीके के साथ उसका निफाज करते हैं। हम नीम दिलाना तरीके से ये काम करते हैं। वजह उसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। असल में कोई चीज़ उस वक्त दिल से होती है जब आपका दिल उसको मान भी रहा होता है। हमारे यहाँ जितने भी इस तरह के इस्लामी कवानीन नाफिज़ हुए हैं, ये दर हकीकत लोगों के दबाव से नाफिज़ हुए हैं। और बिलमूम आप देखिए, इनकी जो कानून साजी हुई है वो जमहूरी अदवार में नहीं हुई, वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप में हुई है, यानी जब फौजी हुक्मरान आए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि लोगों का, ब्यूरोक्रेसी का, फ़ौज का, दूसरे इदारों का, उसके अंदर उस नौइयत का इनपुट नहीं है जैसा कि पार्लियामेंट में कोई चीज़ ज़ेर बहस आती है तो उसमें होना चाहिए। नतीजा उसका क्या निकलता है कि हम अल्लाह ताला को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। तो कानून जैसे कि बनना चाहिए, जैसे कि नाफिस होना चाहिए, बदकिस्मती से नहीं हुआ, चुनाचे पै दर पै तरमीम हो रही हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्होंने हक दे दिया आपको कि आप चाहें तो दें चाहें तो ना।
मगर गांधी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़कात का जो हुक्म है ये माबूद का अपने अब से है, तो क्या हुकूमत को इसमें इख्तियार हासिल है कि वो किसी के अकाउंट से या खातेदारों के पैसे से खुद ब खुद ज़कात काट ले?
ये असलन तो ये हुकूमती का हक है।
अच्छा,
यानी ये हक अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है लेकिन हुकूमत के लिए मुकर्रर किया। वजह क्या है इसकी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब हम कोई हुकूमत कायम करते हैं तो एक सवाल पैदा होता है जो जब इंसान ने कबाइली ज़माने में भी हुकूमत कायम की तो पैदा हो गया था, वो ये था कि हुकूमत चलेगी कैसे। इसलिए कि मैंने कमाया तो मैं अपना घर चला रहा हूँ, अच्छा चलिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया किसी दूसरे को। लेकिन जब आपने हुकूमत बनाई है तो हुकूमत कहाँ से वसाइल हासिल करेगी कि वो नज़्म व नस्क को चला सके। हुकूमत क्या है? हुकूमत ये है कि उन्होंने दर हकीकत हमें अमन फराहम करना है, अगर कोई बाहर से हमला होता है तो हमें मुदाफ़त के लिए खर्च करना है, उन्होंने सोसाइटी की ज़रूरतों को भी पूरा करना है, बैसीत मजमू माशरे कुछ सहूलतें भी वहाँ पहुँचानी हैं। तो ये सारे अखराजात हैं, कहाँ से करें हुकूमत? तो कदीम ज़माने में जब कबायली तमद्दुन था तो उस वक्त ये तय किया गया कि लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा कबीला है उसमें आपने तय कर दिया कि एक चौथाई या एक तिहाई लोग दे देंगे अपने माल का, तो लोग दे देते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब हुकूमतें मुनज़्ज़म होना शुरू हो गईं तो बादशाहों को अब ये ज़रूरत पड़ी कि लोगों के ऊपर टैक्स आयद किया जाए। टैक्स आयद करने का इख्तियार किसके पास है, ये एक पुरानी बहस है। चुनाचे अगर आपके इल्म में हो तो ये आपको मालूम होगा कि अमेरिका में एक ज़माने में एक मूवमेंट चली थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी ये क्या चीज़ थी? ये चीज़ ये थी कि भाई टैक्स लगाने का हक किसको है। तो जब आपने जमहूरी उसूल को मान लिया तो आपसे आप उसका नतीजा ये निकला कि फिर लोगों ही को हक है कि वो ये फैसला करें। लोगों का फैसला कैसे हमें मालूम होगा? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से, यानी उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये फैसला करेंगे। तो अब इसमें देखिए, उसूल के तौर पर तो ये बात वाज़े हो गई कि हुकूमत को चलना है तो उसे वसाइल चाहिए, और वसाइल उसको बहरहाल माशरे ने फराहम करने हैं, यानी मैंने और आपने देने हैं। ये वसाइल कितने होने चाहिए और हुकूमत को क्या इन्हें बिलजबर लेने का हक है? क्योंकि माल मेरा है ना, मैंने कमाया है। तो अगर एक डाकू आता है और वो आके मेरा माल छीनता है तो उसे आप डाकू कहते हैं। तो हुकूमत आके अगर मुझसे छीनना चाहे तो उसको क्या नाम देना चाहिए? ये सवाल पैदा हुआ। तो अब ये सवाल है जिसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और इससे पहले इल्हामी किताबों में ये दिया कि चूँकि ये माशरा है, इसमें एक हुकूमत कायम होनी है, इसको चलना है, तो इसका हक अल्लाह ख़ुद मुकर्रर कर देता है।
अच्छा।
ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप उन्हीं को हक देते हैं जिन्होंने आप पर हुकूमत करनी है कि वो तय करें, तो वो जुल्म कर सकते हैं और बड़ा जुल्म हुआ है। आप ये देखें कि कदीम ज़माने का अगर आप मुताला करें तो बाज़ औक़ात बादशाह इस तरह टैक्स आयद कर देते थे और लगान आपकी फसलों पर लगा देते थे कि जिसमें किसान के पास बचता ही कुछ नहीं था। यानी वो पुराने ज़माने में कहा करते थे कि वो अपनी तहमत लेके वापस चला जाता है, कुछ रहता ही नहीं बाकी उसके पास। तो रिप्रेजेंटेशन ने फिर अवामी नुमाइंदों को मसूल या जवाबदेह ठहरा दिया। अब बहस होती है पार्लियामेंट में कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना। तो ज़कात असल में अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हुकूमत का हक है।
अच्छा गांधी साहब, इससे मेरे दो सवाल निकल रहे हैं। एक तो ये कि आपने जैसे हमने बना लिया कि ये मुस्तहिक को दिया जाए, किसी गरीब को दिया जाए, तो आपका कहना है कि ये हुकूमत के उमूर चलाने के लिए, जिसमें दिफा भी शामिल है, जिसमें शायद आपकी गली में आके जो जमादार सफाई करता है उसकी तनख्वाह भी शामिल है, ये ज़कात इसलिए इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ने इसको वाज़ह कर दिया है कि कितना दिया जाए, लेकिन जब हमारे देखते हैं कि हमारा मुल्क फैल रहा है, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो उसमें टैक्स भी बाज़ का ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि उमूर हुकूमत अगर हम कहें कि वो जो हद खुदा ने मुकर्रर की उसमें अगर वो नहीं चल पा रहा है तो हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि उसकी शरह बढ़ा दे।
देखिए, बात यह है कि एक तो वो रकम है कि जो हुकूमत मुझसे पूछने की अब पाबंद नहीं रही, खुदा ने मुकर्रर कर दी, वो ले लेगी।
ठीक है,
यानी एक तो तय हो गया ना। अब अगर फ़र्ज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उससे हुकूमत का नज़म नहीं चल सका, मजीद चाहिए, तो अब ये लाजिम है कि वो मेरी रजामंदी से ले।
ठीक,
यानी मेरी रजामंदी के बगैर जो कुछ वो मुझसे ले सकती तो वो खुदा ने मुकर्रर कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने एक नमाज मुकर्रर कर दी ना, वो तो आपको पढ़नी है, इसके बाद नफल नमाज है वो आपको अपनी मर्ज़ी से अदा करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी यही होगा कि फिर रियासत को अवाम से रजू करना पड़ेगा, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करेगी, वो बताएगी कि देखिए आपकी ज़कात इतनी हमारे पास पहुँच रही है, इससे ये मसाइल पैदा होते हैं, ये हल नहीं हो रहे हैं, तो हमें अब ये करना है। वरना कुरान मजीद ने जहाँ इसका हुक्म दिया है वहाँ ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि जब आप लोगों से ज़कात वसूल कर लें तो फ़ल्लू सबीला हूँ, इसके बाद आप एक पाई का मुतालबा नहीं कर सकते।
अच्छा।
यानी आप बिलजबर कुछ नहीं लिया जा सकता। आपके सवाल के अंदर ये चीज़ मुजमर है कि हुकूमत के अखराज पूरे नहीं होंगे, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ज़कात के बारे में ये जानते नहीं कि उसका पूरा कानून क्या है।
अच्छा।
देखिए हमारे यहाँ आम तौर पर शोहरत हो गई है कि ज़कात तो माल में 2.5% है।
जी,
ये
जी,
माल
जी।
में 2.5% है। माल का मतलब है जो आपकी बचत है, यानी अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं आपने बचा के रखे हुए हैं, या आपने माल को किसी प्लॉट की सूरत दे दी है, जेवर की सूरत दे दी है, यानी वो आपका एसेट बन गया है, उस पर 2.5% है। वरना जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, आपके मकानात कर रहे हैं, आपके प्लाजे कर रहे हैं, आपकी आपकी अपना वजूद कर रहा है, तनख्वाहें आपको मिल रही हैं, उनमें 5%, 10% और 20% है।
अच्छा, अगर 5, 10, 20% करें तो हो सकता है कि आपके पास इतना प्रॉफिटी ना बचा जिसमें कि आप 2.5% निकाल रहे हो।
नहीं, वो टैक्स का उसूल ये है कि जिस तक हुकूमत उसको आयद कर देती है तो आपसे आप टैक्स आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है।
अच्छा
अच्छा, उसके लिहाज से फिर कीमतें मुकर्रर होती हैं। इस वक्त भी जब हुकूमतें आपके लिए एक शरह मुकर्रर कर देती हैं तो ऐसा नहीं होता।
देखते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद एक दूसरी चीज़ भी है, वो ये है कि रियासत को यह हक हासिल है कि वो अगर देखे कि किसी चीज़ के ऊपर अगर टैक्स आयद किया गया है या ज़कात आयद की गई है और वो प्रॉफिटेबल रही नहीं है तो वो उसको माफ़ कर सकती है, यानी एग्जेम्प्ट करने का हक भी रियासत को दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़माने में बहुत सी चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया इसी उसूल पर। ये नहीं कि वो एग्जेम्प्शन हमेशा के लिए है, यानी वो इंतजामी लिहाज से देखा गया। मसलन सब्जियों के बारे में आपने फरमाया कि हम नहीं लेंगे टैक्स, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि सब्ज़ी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे किया जाए? आजकल के ज़माने की तरह करेंसी तो थी नहीं कि आप ले लें, लोगों ने जिंसी देनी होती थी, तो आपने फरमाया नहीं लेंगे। इसी तरह किसी चीज़ को एनकरेज करना होता है, मिसाल के तौर पर घोड़े पालने को एनकरेज किया गया तो उनके ऊपर ज़कात ख़त्म कर दी गई। आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, किसी जगह फसलें तबाह हो जाती हैं, ऐसे सब मौक़ों के ऊपर रियासत को हक हासिल है कि वो एग्जेम्प्ट कर दे, इस्तेस्ना दे दे। तो ये सारा पूरा निज़ाम है जिसके तहत ये चीज़ चलती है।
बड़ी दिलचस्प और नई बातें सामने आ रही है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि प्रोडक्शन पे टैक्स है या ज़कात है, लोग कहते हैं कि ये अनाज और गल्ले और ज़रई पैदावार से मुतालिक है, इसका भी जवाब हम जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़कात के मौजू पर हम आज गुफ्तगू करें। कुछ नई मालूमात मुझे भी हासिल हो रही हैं, यकीनन आपको भी हासिल हो रही होंगी। गांधी साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि कुरान मजीद में तो ज़रात के हवाले से लोग कहते हैं जिक्र आया, आपने प्रोडक्शन की बात कर दी। दूसरा, जब आप इसकी वजाहत करेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि मैं अगर एक तनख्वाहदार एम्प्लॉई हूँ तो मेरी प्रोडक्शन तो कुछ नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ प्रॉफिट पे ही अपने साल के आखिर में जो रकम मेरे अकाउंट में होगी उस पर दूंगी ज़कात?
जब भी कोई कानून बनाया जाता है या ज़ाब्ता बनाया जाता है तो उसका आप अपने ज़माने के लिहाज से इतलाक़ करते हैं। मसलन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी से ज़कात दी, इसलिए कुछ ज़माने में माल वही था। अब आज करेंसी आपके पास मौजूद होती है तो क्या हम ये कहेंगे कि उसमें ज़कात नहीं दी जाएगी? यानी देखा जाएगा कि वहाँ प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है। तो उसूल ये है कि माल पर ज़कात है। माल की एक किस्म सोना चांदी है, हीरे जवाहरात भी माल है। इसी तरीके से आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, आज वो भी बहुत बड़ा माल है। क़दीम ज़माने में नहीं होता था इस तरह से, अगर ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो कहाँ उसकी ये कीमत थी, लेकिन आज वो कीमत करोड़ों में होती है बाज़ औक़ात, और आप उसमें अपना माल बाज़ औक़ात जमा करके रखते हैं इस उसूल के ऊपर। इसी तरह बेशुमार शेयर्स हैं आपके, ये बेशुमार नई चीज़ें आ गई हैं। तो दीन का उसूल ये है कि वो जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर आप उसको अप्लाई करते हैं, उसका इतलाक़ करते हैं मौजूदा ज़माने पर। तो मैंने कुछ नहीं किया सवाए इसके कि ये बताने की कोशिश किया कि देखिए जो प्रिंसिपल है वो पैदावार है, प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन उस ज़माने में सिर्फ ज़रई होती थी। आप अगर दुनिया की तारीख का मुताला करें तो ये मालूम है कि इंसान पर पहला दौर वो था जब लोग गैदरर्स हंटर्स कहलाते थे, यानी वो फल जमा कर लेते थे, खा लेते थे, वो कुछ शिकार कर लेते थे, बस उस पर उनकी ज़िंदगी चलती थी। उसके बाद ज़रात का दौर शुरू हुआ, यानी इंसान ने कुछ बोना शुरू किया, कुछ फसल बर्दाश्त करनी शुरू की, तो ज़रई दौर दुनिया के अंदर रहा एक लंबे अरसे तक। ये तो 150 साल हुए हैं जबकि आप एक दूसरे दौर में दाखिल हुए हैं। इसमें अब मईशत के वसाइल बिल्कुल तब्दील हो गए, ये बड़े शहर वजूद में आ गए, बड़ी बिल्डिंग्स वजूद में आ गईं, बड़े बड़ी कंपनियां वजूद में आ गईं, ये कहाँ थी इससे पहले। तो दीन को अगर सारी दुनिया में रहना है और हमेशा के लिए रहना है तो फिर आपको इज्तिहाद करके देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का या उसूल का आज इतलाक़ कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा। तो मेरे नज़दीक जो पैदावार का उसूल है उसका सनती पैदावार, आप देखिए सनती पैदावार आप कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन का लफ्ज़ बोलते हैं, उस पर भी इसका इतलाक होगा। इसी तरीके से आपने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए जिनसे आप करोड़ों रुपए का किराया वसूल कर रहे होते हैं, उस पर भी इसका इतलाक होना चाहिए। मैं अगर किसी जगह काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वजूद को सपोर्ट कर देता हूँ एक कंपनी के, उसकी मुझे वो तनख्वाह देती है तो मेरा वजूद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, 10,000-15,000 सैलरी, तो ये भी हकीकत में प्रोडक्शन ही है। तो मैंने सिर्फ ये तवज्जो दिलाई है लोगों को कि प्रोडक्शन की नई सूरतों को भी इस हेड के तहत रखिए। चुनाचे आपकी सैलरी पर भी इसी तरह प्रोडक्शन की ज़कात होनी चाहिए, आपके किराए पर भी इसी तरह प्रोडक्शन की ज़कात होनी चाहिए, आप स्कूल कायम करते हैं उसकी फीसें लेते हैं उस पर भी प्रोडक्शन की ज़कात
आए होनी
चाहिए। महाना क्या, रोज़ाना भी हो सकती है। एक जो आपके डॉक्टर साहब हैं वो शाम के वक्त जो बोरी भरते हैं उस पर भी इसी तरीके से ज़कात आयद हो जाएगी, इसलिए कि वो रोज़ाना फीस वसूल कर रहे हैं, प्रोडक्शन की ज़कात आयद हो जाएगी। अगर आप इस लिहाज से देखें तो जो आपका टैक्स नेट बनता है वो बहुत वसी बनता है, यानी आप सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा बनता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप ज़कात को समझ कर और मौजूदा ज़माने में जो नई सूरतें पैदा हो गई हैं उन पर सही अप्लाई करके ज़रा कैलकुलेट करके तो देखें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टैक्स लगाने की।
सर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, आपने कहा ज़कात और टैक्स, आपने एक ही ब्रेथ में दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। हम जो सुनते आए हैं बचपन से वो ये है कि जी ज़कात आपने देनी है, उसकी यूटिलिटी आपने इंश्योर करना है कि सही ज़रूरतमंद आदमी तक पहुँचे। फिर ज़कात की जो डेफिनेशन है हदीसों में या मुख्तलिफ जगहों पर वो डिफ़ाइन भी हो गई है कि ये गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हुकूमत का जो टैक्स है वो नेशनल ड्यूटी है मगर ज़कात इज़ योर रिलीजियस ड्यूटी। तो आप तो कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वही तो ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक हैं और मेरे जो पैसे हैं वो हुकूमत के पास जाएंगे और वो हो सकता है कि वो उन पैसों को अपनी BMW पे खर्च कर दें और उस गरीब पे खर्च ना करें जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो ये फिर कैसे होगा, मैं तो कन्फ्यूज़ होगा कि आप कह रहे हैं दोनों चीज़ें एक हैं।
यानी आपने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख नहीं पढ़ी, तो आपको मालूम है कि उस ज़माने में लोग इनफरादी तौर पर ज़कात अदा कर सकते थे, रियासत देती थी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लोग मुकर्रर किए जिनको मुतसद्दिक कहते थे, आमिलीन अलैहा कहते थे, उनका जिक्र आया कुरान मजीद में। कुरान मजीद ये कहता है कि पूरी की पूरी स्टेट असल में है क्या, पूरी स्टेट असल में अल आमिलीन अलैहा है, यानी क्या करती है रियासत। रियासत को अगर आप डिफ़ाइन करें इल्म सियासत की ज़ुबान में तो वो टैक्स वसूल करती है, टैक्स को खर्च करती है।
सही।
तो इसी वजह से कुरान मजीद ने ये ताबीर इख्तियार की। खुलफाए राशिदीन के मामले में तो आपको मालूम है कि सैयद अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया था कि ये किसी तरह हो नहीं सकता, आज की हुकूमत भी आप टैक्स देने से इनकार कर दें तो इससे वो नाफरमानी है, इसके ऊपर आपके खिलाफ इकदाम करती है, तो बिल्कुल ऐसे ही किया गया। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि ये कोई इनफरादी मामला है, ये हुकूमत का हक है यानी सोसाइटी का हक है, सोसाइटी को मुनज़्ज़म करती है रियासत या हुकूमत, तो उसके आपको सपुर्द करना होता है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इन रिटर्न जो कि हम कह रहे हैं कि मेरी गली साफ नहीं हो रही है, मेरे घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, मुझे पता है कि मेरे हुक्मरानों का जो लाइफ स्टाइल है वो प्रतायुष बन गया है मेरे पैसे की वजह से, तो भी क्या हम इस हुकूमत को ये टैक्स
दे रहे हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बावजूद आप टैक्स दे रहे हैं, यानी दोनों में फ़र्क क्या है?
हाँ,
आप टैक्स दे रहे हैं यानी आपकी ये सारी शिकायतें मौजूद हैं और ये शिकायतें मैं आप सब करते हैं इसके बावजूद दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ ये है कि किसी का हक क्या है, एक दूसरी चीज़ है क्या वो उसको ठीक इस्तेमाल कर रहा है। तो हम अपनी हुकूमतों का मुहासबा करते हैं, हम पार्लियामेंट में मुहासबा करते हैं, सड़कों पर मुहासबा करते हैं, वो करें, लेकिन किसी के हक की नफ़ी कैसे की जा सकती है? यानी अगर रियासत के लिए एक रकम मुकर्रर कर दी गई है, क्या ये इस्तदलाल किया जाएगा कि कल हम टैक्स नहीं देंगे हुकूमत को क्योंकि हुकूमत गलत खर्च करती है उसको? यानी ये मान लिया गया है दुनिया में कि टैक्स हुकूमत का हक है, अब हुकूमत उसको गलत इस्तेमाल करेगी तो पहला मरहला होगा इस्लाह के लिए कोशिश का, दूसरा मरहला होगा कि हम मुनज़्ज़म होकर हुकूमत के ऊपर दबाव डालें, तीसरा मरहला वो भी आ जाता है जब हम सिविल नाफरमानी करते हैं, हम कहते हैं कि आप गलत खर्च कर रहे हैं हम नहीं देते। तो ये मरहला जो है ज़कात में भी आ सकता है, टैक्स में भी आ सकता है।
अच्छा गांधी साहब आपका कहना है कि टैक्स ही दरअसल ज़कात है, तो आप मुझे बताइए कि जब हुकूमत हर माह मेरी तनख्वाह से टैक्स ले रही है तो मैं किस तरह मुअय्यन करूँ कि मुझे कितना कितनी ज़कात देनी है?
मेरे नज़दीक देखिए जी, अगर तो कोई हुकूमत फिलवाके इस्लाम पर अमल करना चाहती है तो उसे सबसे पहले आपसे ज़कात लेनी चाहिए, फिर ये फैसला करना चाहिए कि उससे नज़्म व नस्क चलाने में कोई दिक्कत हो रही है, तब अगला कदम उठाना चाहिए। इस वक्त चूँकि हमारी हुकूमतें ये नहीं कर रही, तो मैंने बहुत वजाहत के साथ हमेशा ये कहा है कि आप जो टैक्स देती हैं उसका भी हिसाब कर लें, वो तो ज़ाहिर हिसाब हो ही जाता है कि इतना टैक्स है, और आप अपनी ज़कात का भी हिसाब कर लें, अगर उसके बराबर हुकूमत ने ले लिया है आपसे तो अदा हो गई, और अगर कम लिया है तो दे दीजिए।
सही सर, गांधी साहब एक और
आप एडजस्ट कर सकते हैं
सर टैक्स, अगर इसका मतलब ये हम टैक्स ना पे करें तो हराम है,
इसमें क्या शक है?
मैं यही
आप एक मुल्क में रहते हैं, आप नज़्म व नस्क हुकूमत का चलाने में शरीक हैं, आप उसकी सड़कों से इस्तेफादा करते हैं, आप उससे बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, तो सवाल ये है कि हुकूमत आपसे आपको अमन देती है, पुलिस पर खर्च करती है, फौज पर खर्च करती है, ये हुकूमत कहाँ से लाएगी? आसमान से अल्लाह ताला से मांग के लाएगी, आप इसे लेना।
गांधी साहब ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली हमारा कारोबारी तबका जो है, बड़ी बड़ी दुकानें ज्वेलर्स की हम अपने अपने शहर में देखती हूँ, और रमज़ान में माशाल्लाह उनकी लाखों कमाई है, करोड़ों कमाई है, ज़कात भी जो उनका दुरुस्त तरीका है वो निकालते हैं और कोई कमी नहीं करते, लेकिन टैक्स नहीं देते। ایسا شخص کہاں کھڑا ہے اسلام کی نظر میں؟
یہ بات یہ ہے کہ انہیں دونوں کام کرنے چاہیے. اس وقت کیونکہ ایک حکومت کے ساتھ وہ معاہدے میں ہیں تو انہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کی جدوجہد کرنی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ حکومت زکوٰۃ لے. اور دیکھیے, جس وقت آپ زکوٰۃ نافذ کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے خدا آ جاتا ہے. یعنی اب گویا صرف اتنا معاملہ نہیں ہے کہ حکومت نے آپ سے یہ کام کرانا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. تو پھر لوگ اکیلے میں بلا کے بھی یہ کوشش کریں گے کہ وہ پوری پوری رقم ادا کرنے کی صحیح کریں, کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں ایک طرف ہم ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں, دوسری طرف ہم خدا کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے. لوگوں نے اصل میں بدقسمتی سے اس پوری بات کو سمجھا نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی یہ عنایت کی تھی کہ ریاست کا حق مقرر کر دیا تھا اور اس طرح دو کام کیے تھے. یعنی ایک طرف اس کے پیچھے اپنی طاقت ڈال دی, اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت, اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, اور میں اب اکیلے میں بھی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا, یعنی دھوکہ نہیں کر سکتا, فریب نہیں کر سکتا, مجھے پورا پورا دینا ہے. ایک طرف یہ, دوسری جانب حکومت کو بھی پابند کر دیا کہ یہ ہے جو آپ کے لیے ہے, اس کے اندر نظام چلائیے, یعنی چادر فراہم کر دی کہ اس چادر کے اندر پاؤں پھیلائیے.
اسی لیے ہم ان خلفائے راشدین کا بھی لائف سٹائل دیکھتے ہیں کہ کیسا تھا.
صحیح ہے, بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ابن خلدون تک تو صورتحال یہ ہے, وہ ہمارا بڑا سماجی مفکر ہے, دنیا بھر میں اس کو مانا جاتا ہے. اس تک تو حال یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں یا اپنے مقدمے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھیے حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ کہ جو ٹیکس لیتی ہیں, دوسری وہ جو زکوٰۃ لیتی ہیں. تو اگر کوئی حکومت ٹیکس لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بنیادی طور پر غیر اسلامی ہو گئی ہے. تو یہ بڑی ضروری بات تھی, لیکن اس کو لوگ فراموش کر بیٹھے. اب عام آدمی کے حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ریاست نے حق وصول کر لیا ہے تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ کو اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
تو سر ٹیکس میں جب ہمارا بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک سرٹن پیسے ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں پاورٹی ایلیویشن کے لیے, لیٹ سے 2% ایلیویٹ کر دیے جاتے ہیں, یعنی کہ جو بھی گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے گی اس کا 2% اس پہ اسپینڈ کر دے گی فار ایگزامپل, اور ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا فارمولا 2.5% ہے. تو کیا مطلب یہ کہ مجھے آدھا پرسینٹ اور پر دینا ہوگا؟
معذرت کے ساتھ, یہ آپ کی بات جو ہے اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ زکوٰۃ صرف اس کے لیے. زکوٰۃ کے بارے میں خود قرآن مجید نے سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے ہیں جن میں صرف 2 غریب اور مسکین ہیں, تو باقی کدھر گئے؟ زکوٰۃ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ العاملین علیہا کے لیے بھی ہوگی, یعنی ریاست کا نظم و نسق چلانے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنی تنخواہیں اسی سے لیں گے. اچھا مزید دیکھیے, فی سبیل اللہ جی. یعنی وہ سب کے سب کام جو آپ خدمت خلق کے لیے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اس کے سارے دائرے میں ہیں. فی سبیل اللہ یعنی اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جہاد, قتال, فوجیں, دفاع کے اخراجات ان کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. والغارمین, کسی آدمی پر چٹی پڑ گئی ہے, تاوان پڑ گیا ہے, کسی آدمی کو نقصان ہو گیا جس کے لیے آپ نے انشورنس کا نظام بنایا ہے, اس کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کی مدد. والمؤلفت قلوبہم, یعنی وہ لوگ کے جن کی تالیف قلب کرنی ہے, پولیٹیکل اخراجات آپ دیتے ہیں نا اپنے قبائلی علاقے میں, اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ یہ کوئی غریبوں کے لیے چیریٹی ہے, یہ اصل میں ریاست کو دیا گیا ہے, ریاست نے اپنے سارے معاملات کو اس سے چلانا ہے. یہ سب بیان ہو گئے ہیں, آپ اگر چاہیں تو میری کتاب میزان میں اس کی تفصیل دیکھیں, میں نے ایک ایک کو بیان کر دیا کہ اس کے تحت کیا کچھ آتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا انفاق فی سبیل اللہ, ہمیں فرق بتائے گا کہ صدقہ ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا دین کے لیے خرچ کرنا, اور زکوٰۃ میں کیا کوئی فرق ہے یا سب یہ زکوٰۃ کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں, اس کی میں آپ سے وضاحت چاہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. زکوٰۃ کے موضوع پر آج ہم غامدی صاحب سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غامدی صاحب, بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ صدقہ, انفاق فی سبیل اللہ یا دین کی راہ میں خرچ کرنا کیا زکوٰۃ سے الگ ہے؟
اصل میں جو حکم دیا گیا ہم کو وہ انفاق کا ہے. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ انفاق ہے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں. اس کا قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, مال کسی کے پاس بہت زیادہ ہو سکتا ہے, جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں ہماری ذاتی ضرورتیں ہوں گی, کاروباری ضرورتیں ہوں گی, حال کی ضرورتیں ہوں گی, مستقبل کی ضرورتیں ہوں گی, ان کے سوا جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے. اور اس معاملے میں قرآن مجید نے اتنی سخت بات کہی ہے کہ جو لوگ ان ضرورتوں کے سوا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے معاشرے کو اور نہیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے, ان کے اسی مال سے ان کی پیٹھیں قیامت میں داغ دی جائیں گی. بہت سخت بات کہی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ سخت ترین جرم ہے جس کا تم ارتکاب کر سکتے ہو. فبشرہم بعذاب علیم, اس طرح کے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے. آپ کو ہر حال میں اپنے مال کے بارے میں نگران رہنا چاہیے کہ آپ کی ذاتی ضرورتیں, کاروباری ضرورتیں, حال کی ضرورتیں, مستقبل کی ضرورتیں, اس کے سوا اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ معاشرے کا حق ہے.
سوری میں آپ کو انٹرپٹ کری, مستقبل کی ضرورتوں کے بارے میں ہم کیسے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کل کو میں بیمار ہو جاؤں اسپتال میں میرا لاکھ.
ایک اندازہ ہوتا ہے نا ہمارا, یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بچے کی تعلیم ہے, اس کے اوپر یہ خرچ ہونا ہے, آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے لیے کوئی گھر بنائیں گی تو اس کا ایک اندازہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا گزارنا ہے تو اس کے لیے بھی کل بیماری ہو سکتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہم نے رکھ لیا, یہ تو ٹھیک ہے. اس کے سوا اگر کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ معاشرے کا حق ہے. معاشرے کا حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر آپ اس کو ادا کر دیں. تو اسی لیے بڑی سخت تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ جو لوگ اس حق کو نہیں پہچانتے اور وہ سمجھتے ہیں مال ہم نے کمایا ہے, ہم نے اپنے یہاں جمع کیا, یہ ہمارا حق ہے, تو یہ فرما دیا نہیں. اچھا, اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک اصولی بات کر دی. اس کے بعد آگے بڑھے اللہ تعالیٰ, آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ معاشرے کا حق متعین بھی کر دیا. جیسے نماز دو رکعتیں فرض کر دی فجر کی, تو آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے 2.5% آپ کو مال میں دینا ہے, 5, 10 اور 20% آپ کو پیداوار میں دینا ہے, مویشیوں کی الگ زکوٰۃ مقرر کر دی, یہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ترغیب دی کہ آپ نے یہ فرض تو ادا کر دیا, کچھ نفل بھی پڑھ لیجیے. تو وہ جو انفاق کے نوافل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صدقہ ہے, وہ خیرات ہے, اس طرح کے الفاظ ہم عام طور پر بولتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ لازم تو نہیں کی گئیں, لیکن ان کی ترغیب دی گئی ہے, آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. اور حضرت مسیح نے تو کیا خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ یاد رکھو جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے, تو اپنا مال بھی خدا کے پاس رکھو, دل بھی خدا کے پاس.
مگر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں, زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کا حق ہے تاکہ وہ حکومت کا نظم و نسق چلائے, اور باقی جو چیزیں صدقہ ہے, خیرات ہے, انفاق فی سبیل اللہ, یہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے کہہ رہے ہیں.
یقیناً ایسا ہی ہے, یعنی آپ کو انفرادی طور پر لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے, اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کی شکر گزاری یہی ہے, یہ تو وہ لازمی چیز ہے جو آپ نے ادا کر دینی ہے.
مطلب یہ تو ہماری مسکنسیپشن ہوگی, تو ہم نے تو زکوٰۃ کو جوڑ دیا مستحقین کے ساتھ ہی.
جی ہاں بالکل, یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. یعنی ریاست کے نظام میں چونکہ یہ چیز بھی قرآن نے شامل کی ہے کہ اگر کوئی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, جن کو ہیو ناٹس کہتے ہیں ہم, اگر کوئی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کی کفالت کی جائے, تو وہ دو پہلی باتیں لوگ پڑھ لیتے ہیں, باقی آگے پڑھتے ہی نہیں.
اور آپ نے اسی حوالے سے ذکر کیا تھا کہ 5%, 10%, 20% لگائی جائے, تو یہ کیا انکم بریکٹس کے حوالے سے ہے؟
نہیں, یہ تو شرح ہے. یہ بات کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس میں آپ کو ایگزیمپٹ کرنا ہے, یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے سونے اور چاندی میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے, باقی حکومت فیصلہ کرے گی آج کے زمانے کے لحاظ سے. اصول بتا دیا کہ آپ کو ایگزیمپٹ کرنے کا حق ہے, یہ شرع ہے. مثلا آپ کی اگر تو جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے تو 5% لیا جائے گا, پروڈکشن کا 5%. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ کو ملا ہے, آپ کی گندم ہوئی ہے تو جتنے من ہوئی ہے, جتنے سیر ہوئی ہے, اس کا 5% لے لیا جائے گا. اگر آپ کی پروڈکشن صرف ایک چیز سے ہو رہی ہے, یعنی یہ صرف محنت سے ہو رہی ہے, یہ صرف سرمایہ سے ہو رہی ہے, تو 10%. اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%.
اچھا, زکوۃ اور عشر کو بھی الگ الگ بیان کیا جاتا ہے؟
عشر کا مطلب ہے 1/10, عربی میں جب آپ کہیں نا, جی ہاں, وہ اصل میں 1/10, تو یہ زکوۃ کی ایک قسم ہے. یعنی جب آپ نصف عشر بھی کہتے ہیں, نصف عشر کا مطلب ہے یہ 5% ہو گیا ہے. خمس کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ 20%. عربی میں خمس 20%, عشر 10%, نصف العشر 5%.
غنی صاحب, کچھ فقے ہیں تو جیسے آپ زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم دے دیتے ہیں بینکس میں, اس فقے کے دینے کے بعد میں زکوٰۃ سے ایگزیمٹ ہو جاتا ہوں, تو اس کا کیا لاجک ہے سر؟
یہی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ میں جو قانون نافذ ہوگا وہ تو جو اکثریت کی رائے ہوگی اس کی بنیاد پہ نافذ ہو جائے گا, باقی اسٹیٹ لا کے علاوہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی فقہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کریں. تو جو قانون ہماری پارلیمنٹ بنا دے گی وہ سب کے اوپر لاگو ہو جائے گا. ٹیکس کے معاملے میں آپ یہی کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے مجھے کسی چیز سے اختلاف ہو, آپ کو اختلاف ہو. ہمارے ہاں تو بہت ظالمانہ ٹیکس ہیں, بعض ٹیکس ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ کوئی عقلی بنیاد بھی نہیں بتا سکتے. اس کے باوجود بہرحال جب اسٹیٹ ایک قانون بنا دیتی ہے تو جب تک ہم نے بغاوت نہیں کر دی ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. یہی معاملہ جو ہے مذہبی معاملات میں بھی کرنا چاہیے. اسٹیٹ لاء وہ بن جائے گا جو اکثریت کی رائے ہے, اکثریت کسی بھی نقطہ نظر کی ہو سکتی ہے. ہمیں یہ کلچر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نقطہ نظر میں بند نہ رہیں, بلکہ ایک دوسرے کی بات سنیں, اپنے اندر وسعت پیدا کریں, چیزوں کو دیکھیں, سمجھیں, اور ایک اچھا ڈیموکریٹک معاشرہ پیدا کریں. ڈیموکریٹک معاشرہ میں جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف الیکشن ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کلچر ڈیولپ کیا ہے جس میں بات سنی جاتی ہے, डायलॉग किया जाता है जिसमें किसी के ऊपर फतवे नहीं लगाए जाते, जिसमें लोगों के कुफ्र और ईमान के फ़ैसले नहीं किए जाते, जिसमें हम एक दूसरे के साथ जब मुकालमा करते हैं तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ रखते हैं, हम इख्तलाफ़ का हक़ उसको देते हैं। अगर ये कल्चर हम अपने अंदर पैदा करें और ये उसूल मान लें कि अक्सरियत की राय से कानून बन जाएगा और हमें पूरा हक़ है कि हम उस कानून को तब्दील कराने की जद्दोजहद करें, लेकिन जमहूरी तरीक़ों से, तो मेरे नज़दीक एक अच्छा मुआशरा हम पैदा कर सकते हैं।
आमदी साहब, यहाँ पर एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि हम देखते हैं रमज़ान की आमद के साथ बहुत सारी टेलीविज़न पर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि यतीम खानों के लिए, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, खैराती अस्पताल के लिए ज़कात मांगी जाती है, तो क्या आज की गुफ्तगू के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये ज़कात उनका हक़ नहीं है, वहाँ पर हम सब सदका और खैरात या रमज़ान के वाले से हम अगर कोई नेकी करना चाह रहे हैं वो रकम वहाँ पर जायज़ है, ज़कात तो हुकूमत को ही जानी चाहिए?
इस वक्त तो लोग इसलिए मांगते हैं कि रियासत उस तरीके से ज़कात ले ही नहीं रही है, यानी रियासत ने तो अपनी ज़िम्मेदारी को ना पूरा किया है ज़कात लेने के मामले में ना खर्च करने के मामले में। एक आप कह सकते हैं कि कुछ नीम दिलाना सा निज़ाम बना दिया गया है जिसमें कुछ काट लिया कुछ कर लिया, वो भी यह कि बैंक में जो आपकी रकम पड़ी हुई है, सवाल ये है आपके प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी ज़कात है। यानी ज़कात से सिर्फ तीन चीज़ें मुस्तस्ना हैं, आपकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है, अवामिल पैदावार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की इमारत पर ज़कात नहीं है, या आपकी ज़मीन है ज़रूरी तो ज़मीन की मालियत पर ज़कात नहीं है, तो ये उससे एग्जेम्प्ट है। और तीसरे ये कि अगर हुकूमत कोई निसाब बना दे, वो बता देते हैं ना कि इतने पैसों पर हम नहीं लेंगे, ये तीन चीज़ें जिन पर ज़कात नहीं, बाकी हर चीज़ पर ज़कात है। तो जब ज़कात जो है वो रियासत लेना चाहती है और ये काम करना चाहती है तो फिर आपसे आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी भी रियासत पर आ जाती है और लोगों को अपील भी किया जा सकता है, लोग इसलिए अपील करते हैं। असल बात यह है कि ज़कात आपको स्टेट को देनी है अगर वो लेने के लिए तैयार है, इसके अलावा आपको इन्फाक करना है, ज़कात तो वो कम से कम चीज़ है। यानी ऐसे ही है कि आप दो रकत नमाज पढ़ के फारिग हो गए, आपको उसके बाद अपने फ़र्ज को अदा करने के बाद जो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मर्तबा है वो तो आपको हासिल होगा, उसकी खुशनूदी हासिल होगी। आप कभी सूरह बकरा के आखिर में देखिए, कुरान मजीद ने जहाँ बयान किया है कि जो हम खुदा की राह में खर्च करते हैं इसका क्या अजर हमको मिलने वाला है, यानी उन आयात को पढ़ने के बाद तो आदमी का दिल ये चाहता है कि उसके पास जो कुछ मौजूद है वो खुदा की राह में दे के फारिग हो जाए। और सच्ची बात यह है कि खुदा की सच्ची मोहब्बत हासिल ही उस वक्त होती है जब हम उसके बंदों के ऊपर खर्च करते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ये इदारे जितने भी हैं ये हमारी मदद के मुस्तैक हैं, अगर वो यतीमों की परवरिश कर रहे हैं, मस्कीनों की, लेकिन ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ज़कात दे दिए तो अब इनका हक ख़त्म हो गया। ज़कात जहाँ जानी है वहाँ जानी चाहिए और इनका हक़ भी हमें मानना चाहिए।
असल में तो ये भी वैसे स्टेट की जिम्मेदारी है कि यतीमों का ख्याल रखा जाए और अस्पताल ऐसे बिल्ड किए जाएँ जहाँ पे इलाज। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपने कहा कि ज़कात हुकूमत का हक है और इसकी हद अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर कर दी गई है, तो अगर हुकूमत अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हद के मुताबिक ही ज़कात ले रही है और अगर इमरजेंसी की सूरत हाल कोई पैदा हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत माल कहाँ से लाए?
यकीनन हुकूमत पर अपील कर सकती है ना, अपील का जवाब नहीं दिया फिर जबर भी ले सकती है। इसलिए कि देखिए जब एक इमरजेंसी पैदा हो गई तो फिर उसके वजूह असबाब होंगे। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया कि अगर हुकूमत साबित कर देती है कि ज़कात से हमारे मामलात नहीं चल रहे हैं तो फिर लोगों के ऊपर वो टैक्स भी आयद करेगी और उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि लोगों की रजामंदी हासिल की जाए। यानी ज़कात वो चीज़ है कि जिसके लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने उसको मुकर्रर कर दिया और ले लेंगे मेरे माल में से, लेकिन इसके अलावा अगर मुझसे कुछ लेना है तो फिर लाजमी तौर पर मेरी मर्ज़ी और रजामंदी होनी चाहिए।
अवामी नुमाइंदे जो किरदार अदा करेंगे,
ज़ाहिर बात है कि ये मर्ज़ी है ना जिसके लिए हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो अगर ये निज़ाम फिलवा के कायम हो जाए तो फिर सियासी पार्टियों को पहले बताना होगा इंतखाब से पहले कि हम इतना टैक्स जायद आयद करेंगे ताकि उनको मैंडेट उसके लिहाज से मिले ज़कात के सिवा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको हक नहीं हासिल होगा।
सर गांधी साहब, मुझे मेरी मालूमात में बड़ा इजाफा हुआ, प्रोग्राम के आखिर में सब आप हम ये कह सकते हैं कि टैक्स देना हम सबका दीनी फरीजा है,
इसमें कोई शक नहीं, इसलिए हम माहिद है ना, जब हम किसी हुकूमत में रह रहे होते हैं तो हम असल में उसके साथ एक माहिद एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। हुकूमत उसके मुआवजे में कुछ सहूलतें हमें देती है और हम उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस वजह से जब हम हुकूमत में रह रहे हैं तो फिर टैक्स देना हमारी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है।
बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब आपका, दानिश आपको भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। टैक्स देने से ना बचे, रमज़ान में जब हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, रातों को जागते हैं, ज़कात की रकम अदा करते हैं, लेकिन आज आपने गुफ्तगू में सुना कि ज़कात हुकूमत का हक है, तो जो टैक्स आप दे रहे हैं वो दें, उसके अलावा आप अल्लाह की राह में जो खर्च करना चाहते हैं खर्च करें, बेशक इसका बड़ा मरतबा और दर्जा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।